स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानं कुयोगी नाम नो वितरति अलं वरै। तो हम जो कुयोगी हैं, भगवान की भक्ति को भूल चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं, जब ऐसे गंध को हम अपने कानों के अंदर से स्वीकार करते हैं, स्मृतिं पुनर, हमारी विस्मृति दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमल हमारे हृदय में पुनर्स्थित हो जाते हैं। इसीलिए मुझे किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं है, मैं चाहता हूं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। इस तरह पृथु महाराज ने सुंदर प्रार्थनाएं की और उन्होंने कहा, न कामये नाथ तदप्यह क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव। आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भगवान का भक्त जो है ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहता, भगवान की सेवा चाहता है, क्योंकि उसमें ऊंचा रस है। एक बार एक व्यक्ति बैठे हुए थे और वो एक मंत्र का जाप कर रहे थे, कह रहे थे, सोहम सोहम सोहम, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो उनके एक भक्त मित्र थे, उन्होंने आके कहा, देखो तुम सोहम सोहम क्यों कह रहे हो, तुम वास्तव में भगवान के एक भक्त हो, भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो ये अच्छा नहीं है, तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। उसने कहा, नहीं, ये मुझे गुरु ने कहा है, ये मंत्र मैं नहीं बदलूंगा। तो भक्त ने कहा, ठीक है, आप बदलना नहीं चाहते तो मत बदलो, लेकिन इसके आगे कुछ जोड़ दो। क्या? आगे एक दा जोड़ दो। ने कहा, ठीक है, ये अच्छा है। तो उन्होंने आगे दा जोड़ दी और वो क्या बन गया, दासोहम 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 दासोहम, मैं उस ब्रह्म का सेवक हूँ, मैं उस पर ब्रह्म का सेवक हूँ। तो तभी उनके गुरु ने सुना, दासोहम दासोहम दासोहम, आकर वो कुपित हुए अपने शिष्य पर कहने लगे, अरे मूर्ख, ये क्या है, गुरु की अवज्ञा, मैंने तुम्हें क्या मंत्र दिया था और ये तुम कौन सा मंत्र बोल रहे हो। कहने लगा, देखो मेरे मित्र ने मुझे मंत्र में कुछ जोड़ने को कहा और मैं मित्र की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए मैं तो यही मंत्र का जाप करूंगा गुरुदेव। गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बदलो मत, लेकिन चाहे तो इसके आगे एक और बात जोड़ दो, वो क्या, स, एक स आगे जोड़ दो, तो दोस्त दोस्त की दोस्ती रह जाएगी अपने स्थान पर और मेरी आज्ञा का भी पालन हो जाएगा। कहा, ठीक है, तो मंत्र क्या बन गया, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम, मैं हमेशा वो ब्रह्म में लीन हो जाऊं, मैं हमेशा के लिए मैं उस ब्रह्म में एक हो जाऊं। तो उसके मित्र फिर आए, फिर कहने लगे, ये क्या, मैंने पहले तुमको मंत्र दिया वो फिर बदल दिया। कहा, नहीं, अभी तो गुरु ने मुझे दिया है ये मंत्र, अब मैं नहीं बदलूंगा। कहा, ठीक है, एक और बात उसमें और जोड़ दो, वो क्या, एक और दा जोड़ दो। तो क्या बन गया, दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम, अर्थात मैं भगवान के दासों का दास बनना चाहता हूँ। और ये मंत्र इतना शक्तिशाली था, दास दासोहम, कि अंततः वो व्यक्ति ब्रह्म में लीन की बात को भूल गए और उन्होंने निश्चय किया कि भगवान के चरण कमलों की सेवा और उनके भक्तों की सेवा ही ऊंची है। तो इसीलिए मुकुंद माला स्त्रोत्र में कहते हैं, मत जन्म निफल मत कैतुबारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एष एव त्वत भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे भगवान, सनातन काल से मैं 84 लाख योनियों में अलग अलग जन्म ले रहा हूँ, लेकिन यदि उन सभी कष्टों का फल मुझे देना चाहते हो, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि एक ही बात, भृत्य भृत्य, आपके सेवकों के सेवकों का भृत्य भृत्य, परिचारक भृत्य भृत्य, उनके सेवकों के सेवकों का भृत्यस्य भृत्य, उनके सेवकों के सेवकों का भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर। बस मैं सेवकों का सेवकों का सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ और मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो कलयुग में यदि हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना है, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के भक्तों का संग करना है, तो ये एकमात्र उपाय है कि अपनी सभी भौतिक योग्यताओं को भूलकर पूरी तरह भगवान और उनके भक्तों की कृपा पर निर्भर रहो। हमारी क्या शक्ति है? हमारी कोई शक्ति नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं। जो भी योग्यता है केवल भगवान की है और भगवान के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की है, हमारी कोई शक्ति नहीं। यदि वो चाहें तो ये संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में क्या 14 लोकों में फैल सकता है। इसीलिए तृणाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णु, घास से भी नम्र होना और एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना, ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और ऐसा करेंगे तब हम कीर्तनीया सदा हरि, भगवान का नाम संकीर्तन सदैव कर सकते हैं। सब फिर जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। काय गौर प्रेमानंदे। तो श्रीमद् भागवत की कथा का अंततः उद्देश्य ये है कि सभी हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में भाग लें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक भी यही कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि नाम संकीर्तन ही भागवत का अंततः उद्देश्य है। तो श्रीमद् भागवत की कथा होती है हमारी शुद्धिकरण के लिए। शुशुषा शत धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भगवान के भक्तों की हम सेवा आरंभ करते हैं तो हृदय की शुद्धिकरण होती है धीरे 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 धीरे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। और धीरे धीरे जब हृदय के अभद्र दूर होते हैं तब नैष्ठिकी भक्ति स्थापित होती है। तो श्रीमद् भागवत के वक्ता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो प्रवचन करे अपने शुद्धिकरण के लिए, और जो श्रोतागण है वो श्रीमद् भागवत का श्रवण करें अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हमारी कथा का उद्देश्य है शुद्धिकरण, मनोरंजन नहीं। तो इसीलिए कोई भी कथा होती है तो उसमें सर्वोपरि होता है भगवान की कथाओं का इस तरह श्रवण करें जिससे हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति, अंदर के जितने भी कल्मश हैं वो तत्क्षण दूर हो जाएं। पांचवें स्कंद में ही हम देखते हैं एक बहुत सुंदर प्रसंग भरत महाराज का। भरत महाराज एक ऐसे महान राजा थे जो कि नरदेव थे। नरदेव अर्थात सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान के प्रतिनिधि। नरदेव अर्थात वो जो भगवान के नियमों को प्रजा में पालन करे। वो नरदेव का अर्थ ये है शास्त्रों के आधार पर राज्य करे, उसे कहते हैं नरदेव, जो अपने जीवन में भी शास्त्र के आधार पर ही नियम पालन करें। भरत महाराज ने कम उम्र में ही सब कुछ त्याग कर सीधा जंगल में चले गए, पर्वत पर चले गए साधना करने, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने। और वहां पर उन्होंने इतनी तीव्रता के साथ भक्ति की, कहा जाता है कि भक्ति करने से उनके हृदय में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई कि उनके आंखों से आंसू बहते थे। वो भक्ति के इतने ऊंचे स्तर पर थे, कहा जाता है कि भाव भक्ति के स्तर पर थे। जैसे ही बैठकर भगवान पर ध्यान लगाने का प्रयास करते उनके रोमांच खड़े हो जाते और उनके शरीर में कंपन होने लगता। तो ऐसे पहुंचे हुए संत थे। और ऐसी अवस्था में एक दिन जब वो आश्रम में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक दूर पर नदी के निकट एक हिरण तेजी से भागी जा रही है और उसके पीछे एक शेर, खूंखार शेर लगा हुआ है। हिरणी बहुत ही भयभीत थी और ऐसी भयभीत अवस्था में हिरणी ने नदी के ऊपर छलांग लगाया, लेकिन जैसे ही छलांग लगाया उस बाघ ने ऐसी जोर की गर्जना की कि हिरणी घबरा गई और उस घबराहट से उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा था वो बाहर नदी में गिर गया और हिरणी ने वहीं पर अपने देह को त्याग दिया। बच्चा नदी में धीरे 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 डूबने लगा। भरत महाराज ने देखा कि यदि मैं जाकर उस बच्चे को न बचाऊं तो हिरण का बच्चा बेचारा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भरत महाराज भागे भागे गए, नदी में कूदे और उस बच्चे को बचा ले आए, उस बच्चे की रक्षा की। और भरत महाराज ने सोचा कि क्योंकि मैंने हिरण के बच्चे को लाया है, चलो इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी देखभाल करता हूँ। बड़े प्रेम से भरत महाराज उस बच्चे की देखभाल करने लगे, लेकिन धीरे 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 वो उस हिरण के बच्चे से आसक्त होने लगे। वो रोज अपनी साधना में जितना समय पहले लगाते उतना समय नहीं लगाने लगे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में उनको मन में ये चिंता होती कि क्या हिरण के बच्चे ने कुछ भोजन किया है, क्या उसे किसी पशु पक्षी ने तो आक्रमण नहीं किया। और जब वो ध्यान लगाकर बैठते तो हिरण का बच्चा निकट आता और धीरे से उनको चाटता और उनके ऊपर धीरे से वो हवा देता हू ऐसे, और भरत महाराज को बड़ा आनंद आता और वो उनकी कोमल त्वचा को इस तरह छूते थे और बहुत आनंद अनुभव करते थे। और उनको लगा कि मैं यदि इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो इसका क्या होगा? तो भरत महाराज धीरे 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 अपनी सारी साधना में क्षीण होने लगे। और कहा जाता है कि भरत महाराज की साधना धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई, इतनी निर्बल हो गई कि अंततः उन्होंने अपने नित्य क्रियाम धीरे धीरे करके सभी बंद कर दिए। तो भक्ति मार्ग में जब हम आरंभ में कुछ नियम भगवान के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं तो बड़ी तीव्रता होती है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो उत्साह कम हो सकता है। और उनके अनेक कारण हैं। भरत महाराज का कारण क्या था कि उन्होंने गलत स्थान पर अपनी अनुकंपा प्रदर्शित की। केवल आध्यात्मिक स्तर पर हमें संबंध जोड़ने चाहिए, लेकिन भरत महाराज का संबंध भौतिक स्तर पर था और केवल भौतिक दया के आधार पर उन्होंने उस हिरण के साथ संबंध स्थापित कर दिया और इसीलिए धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। और यहाँ तक हुआ कि एक दिन भरत महाराज बैठकर मनन कर सोच रहे थे कि मेरे उस हिरण का क्या हाल हुआ होगा, वो मुझे दिखता नहीं, वो अब कहाँ होगा। अरे पृथ्वी, आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि उस हिरण के चरण चिन्ह आप पर पड़े हैं। और ऐसे विरह के भाव में वो थे, प्रतीत होता था जिस तरह दशम स्कंद में गोपी भगवान कृष्ण के विरह में प्रार्थनाएं करते हैं, वैसे विरह की भावना यहाँ पर भरत महाराज एक भौतिक हिरण के प्रति कर रहे हैं। माया शक्ति इतनी भयंकर और प्रभावशाली है कि भरत महाराज जैसे महान भक्त को भी धीरे धीरे करके आकर्षित कर गई और पथ भ्रष्ट कर दी। और भरत महाराज केवल उस हिरण के विषय में स्मरण करते हुए यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक वो पर्वत की चोटी से नीचे गिरे। और नीचे गिरते गिरते उनके मन में बस यही विचार था कि मेरे हिरण का क्या होगा, मेरे प्रिय हिरण की रक्षा कौन करेगा। और हिरण का स्मरण करते हुए वो नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे भगवान गीता में कहते हैं, मृत्यु के समय आप जो स्मरण करोगे वही जीवन आपको तत्क्षण प्राप्त होगा। तुरंत भरत महाराज एक हिरण के रूप में आ गए। हिरण के शरीर में भी भरत महाराज ने अपने पिछले जन्मों के कर्म नहीं भूले, उन्हें सब कुछ याद था, स्मरण था। और क्योंकि उन्हें सब कुछ स्मरण था इसीलिए वो बड़े प्रेम से केवल ऐसे स्थान में जाते थे जहां भगवान के भक्त और महान ऋषिगण भागवत पर कथाएं करते थे। वो अन्य ऋषियों के साथ अधिक संग नहीं करते थे, अन्य हिरणों के साथ अधिक संग न करते हुए केवल ऋषि मुनियों का संग करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि मुनियों के संग में रहेंगे तो ऐसे सत्संग से हमारा भला होगा। और जीवन भर बड़े सुरक्षित थे और अंततः मृत्यु के पश्चात उन्हें जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ। अर्थात जड़ भरत वो थे भगवान के महान भक्त, लेकिन ऐसे शरीर में थे कि कोई देखकर उनको पहचान नहीं पाता कि ये भगवान के भक्त हैं। तो कहा जाता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, भगवान का भक्त कौन है और कौन नहीं ये जान पाना बड़ा कठिन है। और विशेष रूप से कलयुग में लोगों को इस बात की जानकारी बहुत कम है कि भगवान का भक्त होता कौन है, उनके लक्षण क्या हैं। एक बार हम रास्ते पर जा रहे थे इस तरह के वस्त्र पहनकर, तो एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी तो बच्चा बेचारा उत्सुक होकर माँ से पूछा कि माँ माँ ये कौन है जो जा रहा है। माँ ने कहा, बेटा ये भूत है। तो सोचिए, वो बच्चा जब भी इस रंग के वस्त्र में किसी को देखेगा तो वो अपने बच्चों को सिखाएगा कि ये भूत है। तो वास्तव में लोग केवल इस वस्त्र को देखकर या बाहरी आकार को देखकर घबरा जाते हैं, या किसी बहुत अधिक धनी व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि ये कैसे भक्त हो सकता है। तो दोनों प्रकार से लोगों के हृदय में अनेक प्रकार के भ्रम रहते हैं कि भक्त के लक्षण क्या हैं। तो भक्त बाहरी रूप से पहचानना बहुत कठिन है। तो जड़ भरत बाहरी रूप से समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो पागलों जैसा व्यवहार करते, किसी से कुछ बोलते नहीं, पूरा मौन धारण किए थे, और उनके पिता उनको कई नियम सिखाना चाहते थे जिससे सामाजिक दृष्टि से लोग उन्हें स्वीकार करें। गायत्री मंत्र सिखाने का उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उनके पिता श्री बेचारे विफल रहे। तो उन्होंने कहा, चलो छोड़ो, ये तो तुमसे होगा नहीं। तो उन्हें कम से कम शौच या स्वच्छता के विषय में कुछ बातें बताने का प्रयास किया कि देखो, जब आप मलमूत्र के लिए जाओ तो उसके पश्चात अपने हाथ धो और स्नान करो। तो ये ठीक उल्टा करते थे, पहले स्नान करते थे और फिर बाथरूम में जाते थे। तो जानबूझकर ये इस तरह कई ऐसे व्यवहार करते जिससे परिवार के सभी सदस्य भ्रमित रहते और बाकी सब सोचते कि ये पागल है। लेकिन जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उनका असली परीक्षा आरंभ हुआ। वो था कि उनके भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जो घर में जले हुए चावल होते, टूटे फूटे जो भी अन्न होते, वो सब उठाकर उन्हें देते। रास्ते पर पड़े हुए घास फूस उठाकर अपने भाई को देते, क्योंकि वो देखते इतना हट्टा कट्टा है लेकिन नालायक है, कुछ काम नहीं करता। तो उसको खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया जिससे चिड़िया उनको देखकर डर के भाग जाएं। बस वही उनको सेवा दे दी, बस और कुछ नहीं। और एक दिन अचानक यूं हुआ कि उनको घर से भी बाहर निकाल दिया, और वो जंगल में घूमते 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 एक ऐसे स्थान पर आए जहां कुछ डकैत एक मानव बलि की खोज में थे। और उन्होंने देखा कि ये हट्टा कट्टा जवान व्यक्ति, ये तो बलि के लिए उपयुक्त है, इसकी बलि चढ़ाएंगे तो काली माता बहुत प्रसन्न होंगी। तो उसे पकड़ लिया और उसे एक पोल से बांध दिया, और वो बहुत, सबसे पहले उन्हें खूब भरपेट खिलाया। भरपेट खिलाने के बाद अनेक आभूषण डाले और बलि के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही वो अपना अस्त्र चलाने वाले थे, काली माता के उस अर्च विग्रह में से काली माता स्वयं उठकर बाहर आ गई, और उन्होंने उन सभी के हाथों में से सारे अस्त्र छीन लिए और उन्हीं अस्त्रों से खड़े हुए सारे डकैतों को मारने लगे, उनके सर को धड़ से अलग करने लगे, और उन सारे सरों को निकालकर अपने साथ जो आए भूत प्रेत पिशाच उनको बांटने लगे। और भूत प्रेत पिशाच जो अपने हाथ में उनके सर आ गए, उन सरों को आपस में फेंक फेंक कर खेलने लगे। ये सभी भरत महाराज के आंखों के सामने हो रहा था। जड़ भरत की आंखों के सामने ये खौफनाक दृश्य था, लेकिन वो घबराए नहीं। और काली माता जोर जोर से वहां पर चीख रही थी, क्योंकि काली माता ने देखा कि भगवान के एक भक्त के ऊपर आक्रमण हुआ है, इसीलिए भगवान के भक्त की रक्षा करना सबसे उत्तम कर्तव्य है। और इसीलिए काली माता ने अपने हाथ में तलवार ली और वो रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गईं। तो भरत महाराज वहां से निकले और जाते जाते रास्ते पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हाथ में पालकी लिए जा रहे हैं, और पालकी में एक व्यक्ति की आवश्यकता थी कंधा देने के लिए। तो तुरंत जड़ भरत को पकड़ लिया और कहा कि पकड़ो, और जड़ भरत कंधे देने लगे और धीरे धीरे चलने लगे। हट्टे कट्टे थे, काफी शक्तिशाली थे, भार उठाने में उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या दूसरी थी। वो क्या कि उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो नहीं है, रास्ते पे कोई चींटियां तो नहीं है, और चींटियों के ऊपर यदि मैं पैर दूंगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं। तो वो ध्यान पूर्वक देख देख कर कदम रख रहे थे कि रास्ते में कोई चींटी तो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इतने महान भक्त थे कि वो छोटे छोटे चींटियों के जीवन के विषय में भी सोचते थे। तो ये भक्त का लक्षण है कि वो सबके प्रति दया दिखाता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन शाम को हम सैर पर जाते हैं तो हमारे पैर के नीचे न जाने कितने ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, क्या उनकी कोई गणना है? हमारे लिए वो शाम बहुत ही सुहावना होगा, लेकिन बेचारे जो चींटियां हमारे पैर के नीचे आते हैं उनका क्या हाल होता है? उनका तो बड़ा बुरा हाल होता है। तो इस भौतिक जगत में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये जानना ये बताना बहुत कठिन है। जैसे कोई डॉक्टर को पूछे कि डॉक्टर आपका धंधा कैसा चल रहा है, डॉक्टर बोलेगा बड़ा अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? डॉक्टर कहे मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? डॉक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन बेचारे जितने बीमारी से पीड़ित हैं उनका क्या हाल है? बुरा है। हाल ही में 2 दिन पहले इतनी भयंकर वर्षा हुई, हम सबके लिए वो बुरा था, लेकिन जितने भी कार मैकेनिक बंबई में हैं, उनके लिए क्या था? सुवर्ण संधि, जिससे वो अनेक कारों की मरम्मत कर सकें और उससे बहुत धन कमाएं। तो इस तरह अच्छा क्या है बुरा क्या है ये जानना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का भक्त सभी जीवात्माओं के प्रति समान दृष्टि रखता है। और इसीलिए जड़ भरत ने देखा कि रास्ते में छोटे छोटे चींटी जा रहे हैं, तो रुक रुक कर चल रहे थे। तो अंदर राजा बैठा था, तो राजा को झटका लग रहा था, रहुगुण राजा थे। तो रहुगण ने देखा कि ये बात क्या है, बीच बीच में झटके के साथ ये चला रहे हैं, क्या ये पालकी उठाना नहीं जानते? बाहर सर किया और कहने लगे, अरे मूर्खों, मेरे सेवक हो कि क्या हो, आप इस तरह क्यों चला रहे हो, मुझे बड़ी समस्या हो रही है। उन्होंने कहा, देखो समस्या का कारण ये व्यक्ति है जिसे अभी अभी हमने नियुक्त किया, वो बीच बीच में रुक कर चलता है, पता नहीं बीच में रुक कर क्या देखता रहता है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, हमारी कोई गलती नहीं है, इसे आप बताओ। तो राजा ने देखा कि कोई नया व्यक्ति है, तो उसने कुछ कहा नहीं, बस ये कह दिया कि देखो ध्यान पूर्वक चलाना। लेकिन फिर जड़ भरत वैसा ही कर रहे थे, रुक रुक कर चल रहे थे, रुक रुक कर चल रहे थे। राजा को फिर झटका लग रहा था, फिर राजा व्यवहार सर किए और जोर जोर से कहने लगे, देखिए लगता है आप बहुत थके हुए हैं और इस पालकी का सारा भार केवल आपके ऊपर ही है, और क्योंकि आप इतने बूढ़े हो चले हो इसीलिए आप इस भार को उठा नहीं पा रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो ये कार्य और किसी को दे दें, लेकिन आप जानते नहीं कि इस समय मैं आपका स्वामी हूं और तुम मेरे सेवक हो, और तुम्हारा कर्तव्य है कि ठीक तरह से सेवा करके अपने स्वामी को संतुष्ट करो। मैं राजा हूं और मेरे आदेशों का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं? तो उस समय जड़ भरत तब तक शांत जो थे, जीवन में उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं था, सब लोग उसे गूंगे समझते थे, वो कहने लगे, अरे राजन, कौन स्वामी और कौन सेवक, आपको क्या लगता है आप राजा बन गए हो इसलिए आप स्वामी हो? इस जन्म में आप हो सकता है राजा हो, लेकिन अगले जन्म में क्या होगा क्या भरोसा? अगले जीवन में हो सकता है मैं राजा बनूं और आप मेरे सेवक बन जाओ, तब क्या होगा? क्योंकि मृत्यु के समय जो ऐसी चेतना रहेगी, वैसी चेतना अगले जीवन में हमें प्राप्त होगी। और आप कह रहे हो कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन लगता है आप बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा का कोई उम्र होता है? आत्मा न तो जवान है न बूढ़ा है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसका कोई उम्र नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें। राजा ने जब ये वचन सुने तो राजा समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। आत्मा और शरीर के विषय में हमें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। राजा तुरंत उसके सामने आ गए और दंडवत कर दिए, झुक गए और कहने लगे, अरे लगता है आप कोई महान संत हो जो ऐसी वेशभूषा में छिपे हुए हो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कृपा करके मेरे हृदय के अंदर जो अज्ञान की भावना है उसे निकालिए, और मैंने आपके प्रति जो महान अपराध किया है उस अपराध का फल तो मुझे भुगतना ही होगा, चाहे शिवजी और ब्रह्मा जी भी यहाँ आए वो मुझे नहीं बचा सकते, क्योंकि मैंने महान वैष्णव का अपराध किया है। तो कितनी सुंदर बात बताते हैं रघुगुण महाराज कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध करे तो शिवजी भी आकर उसे नहीं बचा सकते, जो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं और तीनों लोकों का संहार करते हैं, बेचारे शिवजी भी हाथ जोड़ लेते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज के किस्से में हुआ। दुर्वास मुनि भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने देखा कि पीछे सुदर्शन आ रहा है, सुदर्शन को देखकर उन्होंने दुर्वास मुनि को कह दिया, देखे दुर्वास मुनि मेरे बस की बात नहीं है, हरि बोल आप आगे बढ़िए। आगे गए शिवजी के पास, शिवजी ने दुर्वास मुनि का स्वागत किया और वो आलिंगन करने गए, लेकिन अचानक देखा कि पीछे से सुदर्शन आ रहा है। शिवजी धीरे धीरे पीछे हटने लगे, कहने लगे ये मेरे बस की बात नहीं है, आप कृपा करके आगे बढ़े, वैकुंठ लोक में आपको शायद आपकी शरण कोई दे दे, आप जाइए विष्णु के पास, मुझे परेशान मत कीजिए, हरि बोल। उन्होंने भी यही जवाब दिया, यही उत्तर दिया। अंततः विष्णु ने भी कहा, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे भक्त के चरण कमलों पर इस तरह अपराध किया है, जाना है तो वापस जाओ अम्बरीश महाराज के पास, नहीं अस्वतंत्र इव द्विज। कहने लगे कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, और भक्तों के चरण कमलों में कोई अपराध करे तो त्रिशूलधारी शिवजी भी उसे नहीं बचा सकते, जो शिवजी तीनों लोकों का संहार करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो नहीं बचा सकते। इसीलिए रघुगण महाराज उनके सामने गिर गए, दंडवत करके कहने लगे, मैंने आपको बुरा भला कहा, कृपा करके क्षमा करें, चाहे जो दंड देना हो दें, लेकिन मेरे अज्ञान को दूर करें। तब उनके इस नम्रता पूर्ण वचनों को सुनकर जड़ भरत ने कहा, रहो गणेश तपसा नयाति न चेजया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत पाद रजोभिषेकम्। कि हे महाराज रहुगुण, आप भक्ति के विषय में सुनना चाहते हो तो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत को सबसे पहले समझो। वो क्या? रहो गणै तत्तपसा नयाति, हजारों साल तक तपस्या करके कुछ नहीं मिलेगा, न चेजया निर्वपनाद गृहाद्वा, अलग अलग मंदिरों में जाकर 56 भोग भी लगाओगे लेकिन हृदय में कपटता होगी तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, और न छंदसा न जलाग्नि सूर्य, बहुत भीषण गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाओ कुछ नहीं मिलेगा, न सूर्य, सूर्य के नीचे खड़े होकर तपस्या करो कुछ नहीं मिलेगा, जल के अंदर खड़े होकर जाड़े के मौसम में संतुष्ट होने का प्रयास करो तो भी आपका कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? विना महत पाद रजोभिषेकम्, क्योंकि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों के चरण कमलों का विशेष विशेष आस्वादन न करे, उसे अपने सर पर न ले, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। विना महत पाद रजोभिषेकम्, अर्थात भगवान के महान भक्तों के चरण की धूली को लेकर उससे अपना अभिषेक करो महाराज, तब आपका कुछ भला हो सकता है। तो इस अभिषेक का तात्पर्य क्या है? क्या भक्तों के चप्पलों को लेकर सर पर मारें या शू स्टॉल पर सेवा ले लें? ये अभिषेक का अर्थ क्या है? ये अभिषेक का अर्थ है भगवान के महान भक्तों की सेवा, और सेवा का अर्थ क्या है? उनके आदेशों का पालन। जो वो सेवा दें वो सेवा करें, आदेशों का पालन। ये है विना महत्पात रजोभिषेकम। इतनी सुंदर बात बताई रहुगुण को जड़ भरत ने, कि जड़ भरत की इन वाणी को सुनकर रहुगुण महाराज का हृदय भक्ति के भाव से ओतप्रोत हुआ, और आगे उनके बीच कई चर्चाएं हुई। लेकिन रहुगुण महाराज उस समय जड़ भरत की वाणी को इसलिए स्वीकार कर सके क्योंकि उनका हृदय नम्र था, और उन्होंने नम्रता से उनके चरण कमलों में सेवा की भावना व्यक्त की। तो इसीलिए गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये गीता का, भागवत का ज्ञान बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है, ऐसे नहीं समझ सकते। केवल किताब खोलकर पन्ने पलटकर हम इसे नहीं समझ सकते, इसके लिए सेवा भाव चाहिए। और जब हम भगवान के भक्तों की सेवा में लगते हैं तब धीरे धीरे हृदय का शुद्धिकरण होता है। एक बार बहुत बड़े राजनैतिज्ञ मदन मोहन मालवीय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए, कलकत्ता की बात है, और वो कहने लगे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि महाराज, भगवत गीता में मेरे कुछ संशय हैं, कृपा करके संशय समाधान कीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी ओर गौर से देखा। उस समय मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने वहां दिखाया, कहा कि देखो वहां मेरे दो ब्रह्मचारी शिष्य हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो पहले थोड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि मैं आचार्य से पूछने आया हूँ और वो अपने पता नहीं किस ब्रह्मचारी शिष्य के पास भेज रहे हैं, क्या भरोसा वो बताएगा कि नहीं, समस्या समाधान करेगा कि नहीं, चलो चलते हैं उसके पास। चले गए ब्रह्मचारी शिष्य के पास, जाकर कहने लगे कि देखिए हमारी कुछ समस्याएं हैं गीता पर, इन समस्याओं का समाधान कीजिए। तो दोनों ब्रह्मचारी दूर में खड़े होकर उस समय बर्तन घिस रहे थे, तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि देखिए हमारे पास अभी समय नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें तो कृपा करके जरा बर्तन घिसने में मदद कीजिए, थोड़ी देर बर्तन घिसेंगे, आनंद आएगा, और उसके बाद जल्दी काम हो जाएगा, फिर हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय उस समय देश के इतने बड़े नेता अपने हाथ में साबुन और सब लेकर बैठ गए, मठ के बड़े बड़े बर्तन घिसने लगे। काफी देर तक बर्तन घिसते रहे, बेचारे काफी देर तक लगे रहे। जब सब कुछ समाप्त हुआ उसके पश्चात भक्तों ने उन्हें कुछ प्रसाद दिया, और फिर उन दोनों ब्रह्मचारियों ने उनसे पूछा कि मालवीय जी आपकी क्या समस्या थी गीता में? मालवीय जी ने कहा, समस्या का समाधान हो गया, जो संशय था वो दूर हो गया। मैं जैसे ही भगवान की सेवा आरंभ की, मैंने अपने आप अंदर से ही धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि वास्तव में वो संशय था ही नहीं। तो इसीलिए गीता में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम। भगवान की सेवा करने से भगवान की कथाओं के विषय में हम समझ पाते हैं। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, उनके भक्तों की सेवा में नहीं लगेंगे, आध्यात्मिक जीवन में हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह रहुगुण महाराज जड़ भरत से शिक्षाओं को ग्रहण किए और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। और इस तरह श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं कि भरत महाराज जिन्होंने भरी जवानी में सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य को त्याग दिया, उस तरह जैसे कोई व्यक्ति मलमूत्र को छोड़े और सीधा निकल जाए बिना पीछे मुड़े, उस तरह भरत महाराज ने भरी जवानी में अपने जीवन के सभी ऐश्वर्यों को त्याग दिया, उन्हीं भरत महाराज को देखिए, अंततः आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त हुई, भले ही उसमें थोड़ी देर लगी हो। उसमें चिंता की कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अंततः भगवान ये आश्वासन देते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो चाहे कितने भी हम प्रगति क्यों न करें, वो प्रगति हमारे साथ रहती है। 1% आप भगवान की भक्ति में लगो तो वो 1% आपके अकाउंट में रहता है। 10% भक्ति करो तो 10% आपकी अकाउंट में हमेशा रहेगा। इसे कहते हैं असली सफलता, कि जो कुछ भी कमाओ कभी कम न हो, कभी समाप्त न हो, सनातन काल तक आपके साथ रहे, ये है असली सफलता। तो जीवन में असली सफलता प्राप्त करनी हो तो केवल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों की सेवा और कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सफलताएं तो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। एक बार कुछ लोग गांव से आए न्यूयॉर्क शहर में, और उन्होंने निश्चय किया कि हम एक बड़े होटल में रहेंगे। तो गांव वाले उस होटल के 100वें मंजिल पर रहने लगे। बहुत बड़ा स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग था, 100वां माला था, और 100th फ्लोर पर उन्होंने अपना कमरा बुक किया। और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि जरा शहर को घूमकर आते हैं, गांव से आए हैं, न्यूयॉर्क शहर है, जो लोग गांव से आते हैं बड़े शहर देखने के लिए आतुर होते हैं, खासकर बम्बई में भी लोग आते हैं, सबसे पहले बम्बई घूमना चाहते हैं, फिर लोकल ट्रेन के दर्शन होते हैं तो फिर कभी नहीं आते वापस लौट कर। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश क्या होते हैं। मैंने कहा सुबह का लोकल ट्रेन पकड़ो, तुरंत सब मिल जाएगा, एक ही रास्ते में आपको सभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर घूम कर लौट कर आए अपने होटल में, तो उन्होंने देखा कि होटल में बिजली नहीं है। उनका कमरा है 100वें माले पर, अब कैसे जाएं? परेशान थे, सबने मिलकर निश्चय किया बस अपने पास एक ही चारा है, पैदल चलो ऊपर तक। किसी ने कहा अरे क्या बात करते हो, 100 मंजिल, यहाँ प्रेमपुरी में तो 5 ही मंजिल हैं, 100 मंजिल चलना पड़े तो क्या होगा। तो घबरा गए, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम एक एक करके ऊपर सीढ़ियां चढ़ेंगे, लेकिन चलते चलते हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। क्या करेंगे? हमारे हृदय की जो दुख होगी वो दुख भरी घटना हम एक दूसरे को सुनाएंगे, क्योंकि दुख भरी घटनाएं तो जीवन में बहुत होती हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक दूसरे को हम संबोधित करते हुए ऊपर तक पहुंच जाएंगे, समय भी बीत जाएगा। कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, चलने लगे, एक दूसरे को सुना रहे थे कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में वो दुख है, सबका बारी बारी से नंबर आया। 99 वाले फ्लोर पर पहुंच गए, 99th फ्लोर पर एक आदमी बच गया। तो सबने कहा देखिए हम सबकी बारी हो गई, बस आपकी बारी है, अब आप अपने हृदय के दुख को व्यक्त कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना भयंकर दुख है कि नहीं बता सकता आपको। कहा नहीं नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, हमने भी जीवन में कई दुख झेले हैं, ऐसी बात नहीं है, बताइए क्यों शर्माते हो। कहा नहीं नहीं बहुत भयंकर दुख है, आप नहीं झेल पाओगे। पर नहीं बताओ तो सही बात क्या है, देखो हम 100वें माले पर आ गए हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कमरे की चाबी मेरे पास थी जो मैंने नीचे छोड़ दी। वाह क्या बात है, उनकी यात्रा सफल रही कि विफल रही? पहुंचे 100वें माले पर, लेकिन यात्रा क्या है, सफल कि विफल? पूरी तरह विफल। बोलोगे सफल रहे, कम से कम 100वें माले पर तो पहुंचे, लेकिन आगे क्या, अंदर जा सकते हैं? कुछ नहीं, उसके बाद डेड एंड। उसी प्रकार भौतिक जीवन में चाहे हम कितनी भी प्रगति क्यों न करें, कितने भी माले क्यों न चढ़ें, लेकिन अंततः जब तक सनातन जीवन के रहस्य की चाबी हमारे पास नहीं, तब जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन 4 दुखों को बार बार भोगना पड़ेगा। तो क्या यही सफलता है? तो हमारे जीवन की सफलता क्या यही है कि बार बार हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहें? नहीं, मनुष्य जीवन की सफलता है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। यदि कोई सोचे कि मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य है तो वह बहुत बड़े भ्रम में है। और ऐसे भ्रम से छुटकारा दिलाने के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की गई है, जिससे मृत्यु के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करे इस रहस्य का वर्णन किया गया है। तो परीक्षित महाराज भी इस रहस्य के विषय में ही जानना चाहते थे और सुखदेव गोस्वामी महाराज उनको यही कह रहे थे। वो कह रहे थे, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। देखिए परीक्षित महाराज, आप जानिए, चाहे जीवन में आप जो भी तपस्याएं करो, दान पर जो भी दान में दो, यशस्विनो जो भी यश कमाओ, मनस्विनो जो मानसिक तर्क वितर्क करो, मंत्रविदो जिन मंत्रों का उच्चारण करो, सुमंगला जो भी मंगलमय कार्य करो, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, यदि उन कार्यों के फल को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, क्षेमं न विन्दति, कोई भला नहीं होगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी, अंततः केवल मृत्यु और कुछ नहीं। तस्मै